ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् सपितां येन भूतले स्वयं रूप कदा मया दाति स्वप्नादिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।
तो पिछली बार हमने चर्चा किया था किस तरह से वैष्णव का जो बिहेवियर होता है वो स्वार्थ से मुक्त होता है, भगवान के भक्ति का, भगवान की शरणागति में अहैतु की भक्ति का एक विशेष महत्व है कि जब तक भक्ति अहैतु की नहीं होती तब तक वो हृदय को शांति या आत्मा को शांति प्रदान नहीं करती। जनरली भौतिक संसार में हम सब व्यक्ति किसी न किसी स्वार्थ से घिरे हुए हैं। हम कोई भी कार्य बिना कोई स्वार्थ के नहीं करते। हम चाहते हैं कि हम कुछ भी करें उसका परिणाम प्राप्त होना चाहिए। कई बार इन प्रकार के लोगों को फलासक्त लोग कहा जाता है, फल में आसक्त। और फल में आसक्त लोग जनरली सकाम कर्मी होते हैं या कर्मी होते हैं। कर्मी का अर्थ होता है कि हर एक कार्य में मेरा लाभ क्या होगा वो ढूंढते हैं। लेकिन भगवद गीता में श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो जानता नहीं है कि उसका जो असली स्वार्थ है वो भगवान के चरणों में है। प्रहलाद महाराज कहते हैं नते स्वार्थ गतिम ही विष्णुम दुराशयाय बहिरर्थ मानेना। बहिरर्थ मानेना का अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने संतुष्टि के लिए ऐसे चीजों का उपयोग करता है, प्रयास करता है इंद्रियों से जिससे वो संतुष्ट हो ही नहीं सकता कभी। अगर आपको सांस की आवश्यकता है तो आप सांस के अतिरिक्त आप कुछ भी आपको दे दिया जाए आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। यद्यपि वो सुनता है इस बात को कि मेरा अंतिम स्वार्थ विष्णु है, मेरा असली स्वार्थ कृष्ण है, लेकिन वो पर्टिकुलर इसी बात को सुनने के बाद भी वो अनसुना कर देता है और वो छोटे छोटे स्वार्थ को ढूंढने चला जाता है। प्रहलाद महाराज स्पष्ट रूप से कहते हैं नते स्वार्थ गतिम ही विष्णु। तो जब तक कोई व्यक्ति भगवान की अहितु की भक्ति में नहीं जुड़ जाता, जैसे मैं सुदामा का एग्जांपल भी दिया था और गोपियां भी अपने गीत में गाते हैं कि सुरतनाथ होते अशुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किम बधा। वो कहते हैं कि हे कृष्णा हम आपकी अशुल्क दासिकाएं हैं। अशुल्क दासिका का अर्थ होता है कि हम आपकी सेवा करते हैं और इसके सामने हमें कुछ चाहिए नहीं। अशुल्क, शुल्क का अर्थ होता है प्राइस, कुछ पे करना पड़ता है, लेकिन हम अशुल्क दासिका, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि यही जीवात्मा की वास्तविक स्थिति है, अशुल्क। भगवान परम स्वामी है और हम उनके सेवक है और हमारी जो भावना है भगवान के प्रति वो इस प्रकार की होनी चाहिए। और जनरली भौतिक संसार में देखा जाता है कि जब अशुल्क बात होता है ना कि आप वॉलंटरी सेवा दो, तो इसमें कई बार ये देखा जाता है कि हम हमारी मर्जी के आधार पर सेवा करते हैं, क्योंकि हम तो वॉलंटरी कर रहे हैं ना, तो हम जितना करना है करेंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे। देखा जाता है ऐसा वास्तव में, ये प्रभुपाद एक बार बताए थे कृष्ण कॉन्शियसनेस इज वॉलंटरी, कृष्ण भक्ति जो है वो स्वेच्छा से की जाती है, इसको आप कोई आपको दबाव से नहीं कर सकता। अगर मैं आपको क्या बोलते हैं आपके गुजराती में फतवा बोलते हैं, ऐलान, कोई डिमांड, आदेश, उस प्रकार का अगर हम आपको बताएंगे तो इससे आप कृष्ण भक्त नहीं बन पाएंगे, क्योंकि भक्ति इस तरह से नहीं होती है, भक्ति स्वेच्छा से होती है। लेकिन जब निःशुल्क रूप से या शुल्क रूप से जब किया जाता है, उस समय गोपियों ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि भगवान भी उनके सामने विवश हो गए कि उनको पे नहीं कर सकते। अर्थात जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो भगवान के चरणों की, तो परिणाम यह आना चाहिए कि आपकी सेवा पूर्ण रूप से 100% सर्विस इस प्रकार से होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि हमें हमारा पूरा प्रयास करना चाहिए, ऐसा नहीं कि जनरली क्या होता है कि बस मैं इतना ही कर सकता हूं, इससे अधिक नहीं कर सकता। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपके पास 24 घंटे हैं और आप इस 24 घंटे का उपयोग पूरा परिश्रम करके कर सकते हो। हमारे कई डिवोटी है बहुत भगवान की सेवा में जुड़े हुए, बुद्धिशाली है, बहुत ही पूरा उपयोग करते हैं। वो जानते हैं कि अगर मैं 8 घंटा करो से काम करने पर भी मुझे इतना मिलता है, 6 घंटा काम करने पर भी इतना मिलता है, तो 6 घंटा क्यों नहीं करूंगा, 8 घंटा 2 घंटा भगवान की सेवा में यूज होगा। तो इस तरह से व्यक्ति को सावधान होकर के अपने शरीर के आवश्यकताओं के प्रति कम से कम समय देना चाहिए, कम से कम समय। इसका अर्थ होता है कि हमें पता है कि इससे अधिक काम करने से मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला। ठीक है, अगर आपके पास अधिक धन आ गया तो आप भगवान की सेवा कर पाएंगे, दैट्स फाइन। लेकिन अधिक धन प्राप्त करने के पश्चात भी शरीर तो अंत में नष्ट होने वाला है, तो आप उस धन का करोगे क्या, है ना? अगर आप समझेंगे कि नहीं, हमारे पीछे जो पेड़ी है हमारी, वो इस धन का उपयोग करेगी, तो जैसे रूप गोस्वामी का उदाहरण है, मैं उस तरह से अनुसरण करना चाहिए कि अगर आप आने वाली पीढ़ी को धन न कमाना पड़े इस कारण आप अपनी कृष्ण भक्ति को सैक्रिफाइस कर रहे हो, और आने वाली पीढ़ी धन नहीं कमाने के कारण अगर वो कृष्ण भक्त नहीं बने भी किसी कारण से, तो ना आपकी पीढ़ी का उद्धार हुआ ना आने वाली पीढ़ी का उद्धार हुआ। इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि एक अच्छा उदाहरण यही होता है कि आप अपनी भक्ति को भी संभाल के रखो। आत्मनाम सर्वतो रक्षेत, सबसे पहले व्यक्ति को अपने आत्मा का चिंता करना चाहिए, उसके बाद शरीर, उसके बाद आपके परिवार जनों की चिंता करना। आत्मनाम सर्वतो रक्षेत। तो सबसे पहले हमें अपना उद्धार करना चाहिए, जन्म सार्थक करी। कई बार हमने देखा है कि दूसरे का उद्धार करने के पीछे वो उसके पीछे हम खुद माया में गिर जाते हैं। तो आप माया में गिरते हो और दूसरे का उद्धार करते हो, ये कौन सी बुद्धिमानी है? इसलिए सबसे पहला प्रयास होना चाहिए कि हम अपने आप का स्थान सुरक्षित करें कृष्ण भक्ति में। नियत चरण स्थान मांगे ये पामर, कांदिया कांदिया करो ये करुणा दान। सुना है आपने सॉन्ग गोपीनाथ जी? नियत चरण स्थान, हे कृष्ण मेरा स्थान आपके चरणों में है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि आप अहमदाबाद में अभी रहते हो कई सालों से, शायद जन्म से है ना, आप अहमदाबाद में रहते हो, ठीक है, कभी आप गए गुजरात के बाहर, कभी गए अहमदाबाद के बाहर है ना, कभी गए भारत के बाहर, इंडिया के बाहर, लेकिन आप जितनी बार भी गए वापिस कहां पर आए? अहमदाबाद ही आ गए वापिस, घर पे आ गए अपने, इधर कहीं जगह पर आप 15 दिन रहे, 10 दिन रहे, महीना भर रहे, 2 महीना भर रहे, 6 महीना भर रह लिए, लेकिन फिर भी आप अंत में कहां पर आए? वापिस। शायद एक रूप से अगर भौतिक दृष्टि से देखो तो यहां पर इस स्थान के प्रति आपका होम फीलिंग है ना, हालांकि ये तो शाश्वत नहीं है, शरीर है तब तक है, लेकिन फिर भी आप कहीं पर भी हो तो आपको इधर आना अच्छा लगता है ना, होम स्वीट होम बोलते ना, अच्छा लगता है, घर आया अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमारा जो होम स्वीट होम जो है वो है भगवान का चरण, ये होम स्वीट होम है हमारा, वहां पर ही हमें शांति प्राप्त होती है। अभी किधर भी जाओ, दूर जाओ, इधर आओ, अहमदाबाद आओ, कहीं भी जाओ, मनुष्य के शरीर में आओ, सुअर के शरीर में जाओ, कुत्ते के शरीर में जाओ, कहीं पर भी जाओ, जब तक वो नियत चरण स्थान में नहीं जाएंगे होम स्वीट होम, तब तक शांति नहीं प्राप्त होगी। नियत चरण स्थान वो हमारा नियत स्थान। मांगे पामर, ये पापी आपसे स्थान प्राप्त करने के लिए फिर से मांग, कांदिया कांदिया रो रो कर सिर पटक पटक करके आपसे मांग रहा है कि मुझे अपने घर वापस बुला लीजिए प्लीज, मुझे आपके चरणों में वापस स्थान दे दीजिए, मुझे आपके चरणों में रहना है, ठीक है इस शरीर में रहूंगा लेकिन मन मेरा रहेगा कहाँ पर? आपके चरणों में। मन इधर रहना नहीं चाहिए, मन आपके चरणों में रहना चाहिए। ये तो चरण स्थान मांगे पामर, कांदिया कांदिया करो हे करुणा दान। हे कृष्णा आप तो करुणा के सागर हो, एक छोटा सा बिंदु दान के रूप में दे दीजिए मुझे कृपा। तो पिछली बार हम सुन रहे थे इस प्रकार से, और एक लेटर प्रभुपाद ने रूपानंद को लिखा था जिसमें प्रभुपाद लिखते हैं, नाउ आई वांट दैट वी शैल कॉन्सेंट्रेट ऑन मेकिंग अवर डिवोटीज कृष्ण कॉन्शियस एंड अवर सेल्फ बिकमिंग कृष्ण कॉन्शियस एंड नॉट बी सो मच कंसर्न विद एक्सपांडिंग अवर सेल्फ वाइडली but without any spiritual content, just like boiling the milk, it becomes thicker and sweeter. Now do like that, boil the milk. Prabhupada ne kaha ki ye tha 1972 mein, Prabhupada ne kaha ki humne hamara vistar kiya hai, jaise kai baar hum aajkal bhakton ko hamesha kehte hai ki एक्सपांशन तो बहुत होते हैं, कई लोग जुड़ते हैं कृष्ण भक्ति में, रोज नए लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन जो जुड़ने वाले भक्त है वो 5 साल के बाद भी अगर उनके आध्यात्मिक जो प्रगति नहीं हुई तो फायदा क्या है। अगर आप भले 5 लोग हैं लेकिन 5 ऐसे होने चाहिए कि जो 50 के बराबर हो। तो प्रभुपाद ने कहा कि अभी हमारा उद्देश्य केवल नए लोग को भक्त बनाए, लेकिन जो पुराने भक्त जो बन चुके हैं उनका आध्यात्मिक जो स्टैंडर्ड है वो ऊपर होना चाहिए भक्ति में। आध्यात्मिक स्टैंडर्ड ऊपर होने का अर्थ है वैष्णव के कुछ गुण होते हैं कि वो विनम्र होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, भौतिक आकर्षण उसका कम होता है और नष्ट हो जाता है, वो सेवा में रुचि रखता है, ग्रंथों को पढ़ता है, ध्यान से पढ़ता है, नियमित रूप से अपनी स्वरामाला करता है, सेवा के लिए तत्पर रहता है और जिसको मिलता है उसको भगवान के नाम का उपदेश देता है, और ये सारे गुण उसके अंदर प्राप्त होते हैं धीरे 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 धीरे, ये सब होते हैं उसके नाम, वो सारे माया के कार्यों से अपने आप को बचा के रखता है, दूर रखता है, उसकी सोच भगवान के चरणों में स्थिर रहती है। भले वो कुछ नहीं करेगा, विद्वान नहीं होगा, फिर भी अगर केवल बगीचे में जाकर के फूल तोड़ के भगवान के चरणों में रोज अर्पण करेगा, बस यही करता रहेगा पूरा लाइफ टाइम, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और कुछ उसको नहीं आएगा तो दैट स्टिल इट इज बेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसका कार्य या उसका चेतना मन भगवान के चरणों में लगा रहना चाहिए निरंतर। तो प्रभुपाद बताते हैं कि इट बिकम्स थीकर एंड स्वीटर, जब दूध को उबालते हैं तो आपको ऐसा होगा कि दूध का क्वांटिटी कम हो गया, एक लीटर दूध को उबाल दिया तो कम हो गया, फिर और ज्यादा उबाल दिया तो क्या होगा, और कम हो जाएगा। लेकिन दूध का क्वांटिटी कम हो जाएगा लेकिन दूध कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। और वो दूध अगर आप बिना शुगर डाले भी पियोगे तो भी मीठा लगेगा, है ना, शक्कर नहीं डालोगे फिर भी आपको मीठा लगेगा दूध। तो आजकल तो हम क्या करने चाहते है, शुगर दुनिया भर की डालना, एक्सटर्नल शुगर डालने का प्रयास करते डिवोशनल लाइफ में, फिर भी वो मीठापन आता नहीं है। लेकिन असली मीठापन दूध का जो है वो तब आता है जब वो उबल उबल करके गाढ़ा हो जाए। तो ये उबालने की जो वृत्ति है इसका अर्थ होता है कि हमें कृष्ण भक्ति में अपने आप को पकाना चाहिए, कृष्ण भक्ति में अपने आप को स्थिर करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि बस एक स्टैंडर्ड तक मैंने प्राप्त किया, जैसे एक लेवल तक मैं पहुंच गया, बस इससे आगे ठीक है, अभी इससे आगे ज्यादा कुछ है नहीं। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं, अगर समझ लो अगर आपने भगवद गीता एक बार पढ़ ली, दो बार पढ़ ली, तीन बार पढ़ ली, तो आपको लगता है कि ठीक है जो सीखना था सब सीख लिया। लेकिन आपके लिए अभी श्रीमद् भागवतम पूरा पढ़ा है, इसको कब सीखोगे आप? श्रीमद् भागवतम के तो 18,000 श्लोक है, कब सीखोगे आप? अगर आपको अगर नहीं, मैं तो दो बार तीन बार पढ़ लिया, श्रीमद् भागवत भी पढ़ लिया, श्रीमद् भागवत पढ़ लिया तो चैतन्य चैतन्य पूरा पढ़ा है, उसको कब सीखोगे आप? तो कहने का तात्पर्य है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि बस एक सीमा तक मैं पहुंच गया, अभी इससे आगे कुछ नहीं। एक सीमा तक जब पहुंचने का अर्थ क्या होता है कि आपके फिजिकल एक्टिविटीज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाते हैं, सबके फिजिकल एक्टिविटीज एकदम समान हो जाते हैं, सब लोग सोनामाला करते हैं, अपना धंधा जॉब वगैरह करते हैं और कीर्तन करते हैं, भोग लगा खाते, प्रसाद खाते हैं, मंदिर आते हैं, सेवा करते हैं, एक्टिविटीज बिल्कुल सिमिलर हो जाती है सबकी, फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट सबकी सेम हो जाती है अपेरेंटली। सबका ऐसा, आपको सबका ऐसा, ये भी सो रहा हूँ मैं भी कर रहा हूँ, सो ये भी चार नियम कर रहा मैं भी चार नियम कर रहा, ये भी मंदिर आता मैं भी आता हूँ, ये भी भोग लगा खाता मैं भी भोग लगा, ये भी भगवत शास्त्र पढ़ता है वो मैं भी पढ़ता हूँ, सब कुछ समान लगेगा आपको हमारे भक्तों के। फिर ग्रोथ कैसे होता है? तो वो ग्रोथ जो होता है वो वैल्यूज का होता है। वैल्यूज का अर्थ होता है मूल्य, गुण, वो अंदर प्रकट होते हैं, वो दिखता नहीं है आपको, आंखों से दिखता नहीं एकदम, ऊपर से सब एक जैसा ही दिखता है, लेकिन सबके भीतर में जो वैल्यूज होती है वो बदल, वो आगे कम ज्यादा होती है,
क्वालिटीज
जिसमें कोई अधिक सहनशील होता है वो आपको ऐसे कैसे पता पड़ेगा ये सहनशील है, है ना? जब प्रोवोकिंग सिचुएशन आती तब पता पड़ता है, प्रभु जी ये भक्त बड़ा स्थिर है, कुछ हुआ नहीं इसको, कितना भी उसको प्रोवोक किया तो, लाइक दैट, ये विनम्र है ये कब पता पड़ेगा? ऐसा तो नहीं पता पड़ेगा ना, विनम्र है कैसे पता पड़ेगा? इसके हृदय में काम क्रोध का आकर्षण नहीं है, ये गुस्सा नहीं होता है, काम से प्रभावित नहीं होता है, ये कैसे पता पड़ेगा देखने से? इसका अर्थ होता है कि एक समय के पश्चात जब आगे बढ़ने का हम प्रयास करते हैं तो सबसे पहला परिवर्तन होता है हमारे क्वालिटीज में, हमारे वैल्यूज में, हमारे मूल्य बदल जाते हैं, हमारे विचार करने का तरीका बदल जाता है, हम अधिक क्षमाशील बन सकते हैं, हम ज्यादा क्षमाशील बनते हैं, हम लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं, परिपक्व बनते हैं कृष्ण भक्ति में। तो ये सारी बातें तब होती है जब बॉइलिंग द मिल्क, जब आप मिल्क गाढ़ा होता है तब की बात है, तब उसका मीठापन पता पड़ता है, अरे वैष्णव ऐसा होता है। और फिर ऐसा वैष्णव जब कार्यशील होता है तो फिर वो छोटा छोटा कार्य तो करता ही है जो साधारण रूप से जो नॉर्मल करते है वो तो, लेकिन वो फिर आगे की सोचता है, बड़ा सोचता है, तब फिर वो सोचता है कि मैं किस तरह से अगर कोई मैं सोचेगा मैं 50 अगर मैं आज 10 भक्तों का प्रचार कर रहा हूँ कल 20 होने चाहिए, वो 20 का नहीं सोचता है, वो ऐसा सोचता है कि एक ऐसा वृक्ष होना चाहिए कि जिसमें मैं 4 लोग को समझाता हूँ और 4 लोग आगे 8 को समझाए, 8 आगे 16 को समझाए, इस तरह से पूरा अहमदाबाद भक्त हो जाए, वो इस तरह से सोचता है। हाँ। और फिर उसी डायरेक्शन से वो आगे का ट्रेनिंग देता है। इसलिए आप जब भी आप प्रचार करो तो आप प्रचार में यही ध्यान रखो कि अभी जो है उन लोगों के स्टैंडर्ड्स को क्वालिटीज को इम्प्रूव करने का प्रयास करो, और इसके लिए हमें अपने स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने पड़ेंगे। अभी कई बार होता क्या है कि हम हमारे स्टैंडर्ड इम्प्रूव कर नहीं पाते और सामने वाला जो होता है जिसको आप प्रचार कर रहे हो वो एक स्टैंडर्ड तक पहुंच गया है, तो क्या होता है कि वो आप वहीं का वहीं GCPT बात फिर से उसको बता रहे हो, उसको सुनना तो अच्छा लगता है, ठीक है वो सुन लेता है आपकी बात, लेकिन उसको फिर स्कोप नहीं दिखाई देता आगे बढ़ने का कि आगे कैसे बढ़े। और उसको क्या, उसको भूख लगी थी, उसको भूख लगी थी, लेकिन आपके पास आपका डिब्बा खलास हो गया, टिफिन बॉक्स आपके पास अब कुछ बचा नहीं उसको खिलाने के लिए, तब क्या बचेगा, अब वो क्या करेगा, भूख तो लगेगा, भूखा तो रहेगा नहीं, तो आपको दो बार मांगेगा आपके पास कुछ है तो दीजिए, आपके पास कुछ है तो दीजिए, वो बोलेगा मेरे पास तो बस है जो सब सब कुछ दे दिया तुम्हें, अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो क्या करेगा, या तो दूसरे किसी भक्त के टिफिन बॉक्स के पास जाएगा या तो फिर किसी भौतिक यू नो रेस्टोरेंट में जाएगा, तो क्या होगा उसका फिर से वो माया की ओर जाएगा, फिर से माया के पास जाएगा अपनी भूख संतोष करने के लिए, और फिर उसका प्रगति के बदले फिर से धीरे 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 वो कमजोर होता जाएगा, क्यों भूख लगी थी कुछ दिया नहीं आपको खाने के लिए। यहां तो कैसा है कि या तो सूर्य रहता है या अंधकार रहता है, अगर आपके पास सूर्य देने के लिए नहीं है तो फिर क्या होगा, वो व्यक्ति अंधकार के पास ही जाएगा ना, सीधी सी बात है। अगर आप उसको हलवा दोगे तो गंदगी छोड़ देगा, अब ये छोटा बच्चा है उसको आप खाना दोगे तो आपकी 1000 रुपए की नोट छोड़ देगा, लेकिन आपके पास खाना खत्म हो गया तो 1000 रुपए की नोट वापिस पकड़ लेगा वो। तो इस तरह से ऐसी अवस्था में भक्त को निरंतर अपने आप को एक स्टूडेंट के रूप में रखना चाहिए कि मुझे और सीखना है, मुझे और सीखना है, मुझे और सीखना है, क्यों, क्योंकि आपसे सीखने वाले लोगों की इच्छा भी अनंत है। तो इस तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए। जस्ट आई रीड वन मोर कोट, अ डिवोटी इज ऑलवेज आइडियल इन बिहेवियर, सो वी ऑल हैव टू कोऑपरेट अमंग अवर सेल्व्स, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, व्हाट विल पीपल थिंक इफ अवर सेल्व्स फाइट विथ अनदर, अ डिवोटी इज ऑलवेज आइडियल इन बिहेवियर। उदाहरण प्रभुपाद ने पतित उदाहरण को लिखा 74 में, प्रभुपाद ने कहा कि भक्तों का आचरण बहुत ही आदर्श होना चाहिए, क्योंकि उसके आदर्श को उसके आचरण को लोग बहुत ही माइक्रोस्कोप लेकर कैसे देखते रहते हैं, एक गलती करो प्रभु जी हम मीडिया में डाल देंगे, एक गलती करो मीडिया में डाल देंगे, आप कुछ भी करते हो आपको देखते रहते हैं, प्रभु जी आप लेक्चर तो देते हो लेकिन आपके आदर्श में तो आपके आचरण ठीक है, शायद ऐसा ही होता होगा सब जगह, कृष्ण भक्ति में ऐसा ही होता होगा, या फिर हमें भी इसका परमिशन है, इसका प्रभु जी खुद ही सिखा रहे हैं क्या करने का, हमें भी इसका परमिशन है, हम जो चाहे कर सकते हैं जीवन में, तो इसमें कोई गलती नहीं है, वो भी अपने चरण दे रहे हैं, लो दबाओ मेरे पांव, तो मैं भी दे सकता हूँ, लो मेरे दबाओ मेरे पांव, तो हो सकता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो ये कोई ऐसा सोच सकता है, या फिर अगर आपके आचरण में कहीं त्रुटि मिलती है तो आप उसकी श्रद्धा जो है वो आपके प्रति जो होती है वो तो कम हो जाती है, फिर वो सोचता है ठीक है अभी रॉन्ग नंबर लग गया, या फिर इतना जितना हमने आशा किया था इतना महान नहीं है। हाँ, अगर वो व्यक्ति का आचरण में त्रुटि नहीं है लेकिन हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा बुद्धिशाली या विद्वान ना हो, फिर भी क्योंकि आचरण उसका सही है इसलिए वो व्यक्ति आदर्श के रूप में है जिससे आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। से, लेकिन उनके आचरण में अनेक त्रुटियां प्राप्त हो गया, जैसे प्रभुपाद बताए आपस में झगड़ना, ये तो एकदम निम्न कोटि का आदर्श बताया, आपस में झगड़ना है, व्हाट द हेक, व्हाट इज दिस, दो भक्त बच्चों की तरह आपस में झगड़े, हाउ डू लोग क्या सोचेंगे, आपस में झगड़ रहे हैं या बुरा मान रहे हैं, यू नो मेरे ग्रुप में तुम्हारे ग्रुप वाला तुम्हारे ग्रुप में झगड़ा, ये हो तो बिल्कुल बच्चों जैसा लगता है ये तो। तो इस प्रकार का आचरण भक्तों को शोभा नहीं देता। तो प्रभुपाद यहां पर लिखे है कि अ डिवोटी इज ऑलवेज आइडियल इन बिहेवियर, भगवान का जो भक्त होता है वो बहुत ही आदर्श होता है अपने आचरण में। तो चैतन्य महाप्रभु भी अपनी लीला में इस बात का बड़ा ध्यान रखते थे। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में एक बार उनके भक्त थे स्वरूप दामोदर, एक छोटा बच्चा था महाप्रभु के पास आके बैठ जाता था, वो बार बार आके बैठ जाता था, सोचा रहा फिर वापस बैठ जाता था और उनको अच्छा लगता था महाप्रभु से, पूरा दिन सुबह आता था रात तक बैठता था, छोटा बच्चा था। तो महाप्रभु उसको कृपा देते थे, प्रसाद देते थे। तो सर्व दामोदर ने बता दिया उस बच्चे को बंद कर दिया आने का, नहीं आएगा इधर। तो महाप्रभु बोले क्यों, क्या हो गया? अरे प्रभु उस बच्चे के आप बच्चे के प्रति आपका लगाव अधिक समय जरूर से अधिक हो रहा था, भगवान है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो सन्यासी है, और वो तो सब जानते हैं महाप्रभु, तो उनमें कोई दोष नहीं हो सकता, वो तो जानते हैं। लेकिन वो बच्चा एक जवान विधवा का है, इसलिए कल समाज में कोई भी आपके और कुछ भी बोल सकता है, इसलिए मैं आपको ये बता। महाप्रभु उसको गले लगा दिया, महाप्रभु थैंक यू तुमने मुझे बचा लिया। हालांकि महाप्रभु को ऐसे हृदय से ऐसा अच्छा नहीं लगा था ये बात कि इस प्रकार का, बट दैट्स ओके, आई मीन भगवान अपने आप को प्रस्तुत करते अपने शिष्यों के लिए, अपने भक्तों के लिए। तो ऐसे कई बार कोई गीत गोविंद गा रहा था, तो कोई माता जी गा रही थी गीत गोविंद, तो महाप्रभु उस दिशा में दौड़ने लगे, तो वो नहीं ये स्त्री है, स्त्री गा रही है, सन्यासी के स्त्री का गाना सुनना वर्ज्य है। तो महाप्रभु तो अपने भाव के अवस्था में थे, वो पता नहीं पड़ कर पाए कि पुरुष गा रहा है या स्त्री गा रहा है, तो वो शब्द देख रहे थे क्या गा रहा है, और उसके उसका परिणाम, लेकिन महाप्रभु ने बचा लिया, तो स्त्री गा रही है। तो इस तरह से कई बार संन्यास धर्म का महाप्रभु कठोरता से पालन किए। प्रताप रुद्र महाराज को दर्शन नहीं देना तो नहीं देंगे आपको, नित्यानंद प्रभु स्वयं नित्यानंद प्रभु भी कृपा मांगा फिर भी मना कर दिया, नित्यानंद तो क्या हो गया, रामानंद राय सॉरी नो, सार्वभौम भट्टाचार्य नहीं, स्वरूप दामोदर नो, ये लोग ऐसे लोग हैं जिनकी बात महाप्रभु टाल नहीं सकते थे, इन लोग को भी मना कर दिया। सन्यासी को राज दर्शन वर्जित है, इसलिए कहने का तात्पर्य कि हमारे आचरण में हमें भले आपका हृदय कितना भी स्वच्छ है, आप कितना भी अच्छे हो, लेकिन आचरण में आपको ध्यान रखना चाहिए सब जगह। तो वैष्णव के आचरण विशेष करके ईर्ष्या करना, द्वेष करना, किसी से झगड़ना, यू नो इस प्रकार का आचरण भक्त को शोभा नहीं देता। तो आगे हम पढ़ेंगे चैतन्य महाप्रभु के विषय में आगे, और महाप्रभुपाद का कुछ लेटर्स हम तो दो तीन लेटर्स पढ़ पा रहे रिकॉर्ड, लेकिन अगली बार से हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, एक एक साथ चार चार लेटर। सो वी स्टॉप हियर, अगर कोई प्रश्न है तो पूछिए।